पृष्ठ संख्या 69, मनोवैज्ञानिक विवेचन के अंतर्गत ही अगला शीर्षक है। बिंदु द, धार्मिक भावना के विकास के मनोवैज्ञानिक आधार। अब तक हमने यह देखा कि मानव चेतना के विकास में ज्ञान और इच्छा की अपेक्षा भावना का विशेष स्थान है। धार्मिक चेतना का विकास धार्मिक भावना के कारण ही संभव हुआ। कारण यह है कि धार्मिक अनुभूति में भाव ही प्रकट होता है, इसीलिए लोगों ने भाव से ही धर्म की उत्पत्ति स्वीकार की। धर्म के क्षेत्र में भाव ही केंद्रीय शक्ति है। इसका महत्व आदिम धर्म तथा उच्च और विकसित धर्मों में भी देखा जाता है। धर्म की अभिव्यक्ति भावना के माध्यम से ही संभव है। कोई भी धर्म और उसमें निहित व्यवहार तथा विश्वास सजीव तब तक नहीं माने जा सकते जब तक कि उसमें भाव न हो। भावना के आधार पर ही कोई दृष्टिकोण या मत धार्मिक मत कहा जा सकता है, अन्यथा वह कोरा मतवाद बनकर रह जाता है। इसलिए जेम्स ने धार्मिक भाव को ही धर्म का सर्वस्व स्वीकार किया है। धर्म का आंतरिक स्रोत धार्मिक भाव में ही दृष्टिगत होता है। विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार के भावों को ही धर्म का आधार माना। ल्यूक्रिटस ने भय के भाव को, फ्लायर माखर ने निर्भरता की भावना को तथा हाफडिंग ने मूल्यों की सुरक्षा के विश्वास को धर्म के लिए आवश्यक माना है। पृष्ठ संख्या 70। हम देख भी चुके हैं कि आदिम धर्म के मूल में भयपूर्ण भाव ही वर्तमान है, परंतु इसे केवल भय की भावना ही कहना उचित नहीं होगा। यह तो वह प्रारंभिक भावना है जो रहस्यमयी पराशक्त के प्रति उत्पन्न होती है। इसमें श्रद्धा युक्त भय और विस्मयता वर्तमान रहती है। इसी भावना से आदिम मानव धार्मिकता की ओर अग्रसर हुआ। यही भावना विकसित होकर प्रेम और भक्ति का रूप ले लेती है। धार्मिक संवेग विकसित रूप से अस्थाई भाव का रूप ग्रहण कर लेता है, जिसके अंतर्गत श्रद्धायुक्त भय, आश्चर्य, सराहना, कृतज्ञता, निर्भरता की भावना, आशा, प्रेम, शक्ति तथा शांति का भाव, हर्ष, आनंद अतिरेक एवं समाधि की अवस्था भी वर्तमान रहती है। पहला, आदिम अवस्था में धर्म में भावातिरेक होने से धार्मिक क्रियाएं, नित्य संस्कार तथा अन्य कर्मकांड देखे जाते हैं। दूसरा है, सामान्य भाव अवस्था में धर्म का रूप संयमित एवं विवेक तथा बुद्धि के नियंत्रण में रहता है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि धर्म में भाव का प्रवेश नहीं रहता। वास्तव में भाव की अभिव्यक्ति इस अवस्था में भी धार्मिक क्रियाकलापों जैसे पूजा, प्रार्थना आदि में होती है और भाव ही केंद्र में रहता है। यदि धर्म में भाव केंद्रीय न हो तो धार्मिक व्यवहार आडंबर एवं रूढ़ ही बनकर रह जाता है। भावना के अभाव में धार्मिक व्यवहार यंत्रवत होते हैं, केवल परंपराओं का निर्वहन मात्र होता है। तर्क पर आश्रित होने से धर्म निष्प्राण हो जाता है। तीसरा है, धर्म का एक और रूप होता है जिसे रहस्यवादात्मक धर्म की संज्ञा दी जा सकती है। इस स्थिति में रहस्यवादी संत या धर्म साधक दैवी शक्ति से निर्बाध एवं प्रत्यक्ष रूप में इंट्यूशन एवं संवेगों के माध्यम से ही संबंध रखता है। धर्म की रहस्यात्मक अनुभूति में अन्य विषयों का लोप हो जाता है। रहस्यात्मक स्थिति में बौद्धिकता एवं कर्मकांड दोनों का स्थान नहीं होता। अगला शीर्षक है आलोचना। पहला है, विलियम जेम्स के कथा अनुसार भाव व्यक्तिगत एवं मूक होता है। भाव अपनी अव्यक्ति स्वतः नहीं कर सकता। भावना अनिश्चित और अवर्णनीय होती है। इसको सार्वलौकिक एवं सामाजिक स्तर पर नहीं लाया जा सकता। दूसरा है, रहस्यात्मक स्थिति में आकर और विषय तभी आ सकते हैं जबकि वह विचार और क्रिया के रूप में परिवर्तित हों। तीसरा है, अतः धार्मिक भावना को फलीभूत होने के लिए क्रिया या इच्छा और बुद्धि का सहयोग आवश्यक है। धार्मिक भावना केवल विचार या बुद्धि से ही न प्रकट हो बल्कि इसको यथार्थ जीवन में भी अव्यक्त किया जाए। धर्म पर विचार ही नहीं करना है, धर्म को जीना भी है, अर्थात धर्म को व्यवहारिक जीवन में उतारना भी है। इस प्रकार जेम्स ने धार्मिक चेतना के तीनों पक्षों का समन्वय किया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि धर्म एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार का व्यवहार है। अगला शीर्षक है, धर्म व्यवहार के रूप में। इतना तो निश्चित ही है कि गहनतम धार्मिक संवेग स्वभावतः क्रियाओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, जब संवेगों की अव्यक्ति में कोई बाधा पड़ जाती है तभी संवेग क्रिया के रूप में प्रकट होने में अक्षम हो जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जब अभ्यंतर में संवेग का उद्भव होता है तो वह क्रिया करने में असफल हो जाता है। इस प्रकार संवेग स्वयं में एक विशेष प्रकार की क्रिया है। कहा भी जाता है कि संवेग प्राणी की किसी परिस्थिति विशेष के प्रति एक प्रतिक्रिया है। यह भी सच है कि भावना या संवेग स्वयं अर्थहीन और अंधा है जब तक कि वह क्रिया के रूप में परिणत न हो। संवेग जब क्रिया के रूप में प्रकट होता है तो वह क्रिया पुनः उस संवेग को तीव्रतर करती है। पृष्ठ संख्या 71। धर्म के विषय में यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और भी सत्य प्रतीत होता है। धर्म एक आभ्यांतरिक संवेग या भाव है जो बाह्य अव्यक्ति की मांग करता है। यदि इसे केवल आत्मगत भाव ही कहें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपूर्ण होगा। धर्म अपने पूर्ण रूप में किसी उद्देश्य की दृष्टि से एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार का व्यवहार है। आदिम धर्म में यह देखा जा चुका है कि यही संवेग किसी पराशक्ति के रूप में किस प्रकार नित्य संस्कार और कर्मकांड के रूप में प्रकट हुआ। आगे चलकर इसी धार्मिक संवेग का विकास अन्य विश्वासों और धार्मिक क्रियाओं में हुआ। आदिम धर्म के पश्चात हम धार्मिक पंथों और संस्थाओं का उद्भव पाते हैं। चूंकि धर्म समाज में ही पनपता है, इसलिए वह परंपरा के रूप में चलता रहता है। यही नहीं, धीरे धीरे धार्मिक संप्रदाय भी खड़े होने लगते हैं और उनको अनेक धार्मिक संस्कारों और कर्मकांडों द्वारा एक रूपता, पवित्रता, निश्चितता एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त होने लगती है तथा उनका ऐतिहासिक विकास चलता रहता है। धर्म में विशेष रूप से दो प्रकार की क्रियाएं अस्पष्टतः देखने में आती हैं, बलिदान एवं प्रार्थना। इन्हीं क्रियाओं के कारण ही सांस्कृतिक धर्म का विकास देखा जाता है। सामान्य रूप से यह भी देखा जाता है कि सांस्कृतिक धर्म के कारण ही मंदिर, वेदी, कर्मकांड, पौरोहित्य परंपरा भी चल पड़ती है। व्यवहार के रूप में धर्म के दो पक्ष देखने में आते हैं। पहला धार्मिक संस्कार या कर्मकांड और दूसरा नैतिक पक्ष। यद्यपि कर्मकांड आदि क्रियाएं धर्म के मूल लक्षणों में है, तथापि धर्म में सेवा भाव का विकास भी साथ ही साथ पाया जाता है। धार्मिक व्यक्ति परम सत्ता को प्रसन्न रखने के लिए अनेक धार्मिक सेवाएं भी करता है। इस प्रकार धर्म के साथ चरित्र और व्यवहार पर भी बल दिया जाता है। धर्म के संरक्षण में नैतिकता का विकास होता है। जो सेवा ईश्वर के प्रति होती है, वही समाज के बीच मानव के प्रति भी की जाने लगती है। कर्मकांड और धार्मिक संस्कारों के लिए पवित्रता और आचरण की शुद्धता पर ध्यान देना तो आवश्यक होता ही है। धार्मिक व्यक्ति आगे चलकर संपूर्ण जीवन को ही पवित्र बनाना चाहता है, इसलिए धर्म के साथ नैतिक आचरण पर भी ध्यान देता है। इस प्रकार धर्म के इन दोनों पक्षों, कर्मकांड और नैतिकता के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। एक वर्ग पुरोहितों का होता है, दूसरा पैगंबरों का। पुरोहित कर्मकांड और प्राचीन परंपराओं के निर्वहन पर अधिक बल देता है और पैगंबर आचरण की पवित्रता, नैतिकता और धर्म की प्रगतिशीलता पर बल देता है। पुरोहित वर्ग परंपराओं में आबद्ध होने के कारण रूढ़ियों को महत्व देकर संकीर्ण सीमा के अंतर्गत ही रहना चाहता है। इसके विपरीत पैगंबर धर्म को संकीर्णता के घेरे से बाहर निकालकर उसे नए परिवेश में लाता है और धर्म को विकासशील बनाता है। यद्यपि उच्च विकसित धर्म में नैतिकता पर ही विशेष बल दिया जाता है, फिर भी धार्मिक संस्कारों, कर्मकांडों एवं पूजा पद्धतियों आदि को व्यर्थ नहीं सिद्ध किया जा सकता और न तो धार्मिक पंथों को ही महत्वहीन बताया जा सकता है। धर्म में क्रिया का सदैव स्थान है। धार्मिक पंथों का स्थान स्वीकार करना ही पड़ता है। इन पंथों के कारण ही धर्म संरक्षित रहता है। पंथों में यही कर्मकांड और संस्कार आदि ही धरोहर के रूप में है। यदि पंथ न हो तो धर्म का लोप भी हो जाए। पंथ इन कर्मकांडों के आवश्यक रूप से निर्वहन पर बल देते हैं, इसलिए धर्म की अनिवार्यता बनी रहती है। इसके कारण स्वेच्छाचारिता नहीं आ पाती। अतः धर्म में पंथ का महत्वपूर्ण स्थान है और उसका लोप संभव नहीं है। इतना अवश्य है कि पंथों से धर्म में रूढ़िवादिता, स्वार्थपरता एवं संकीर्णता का प्रवेश हो जाता है। साथ ही धर्म के बाह्य आचरण अथवा कर्मकांड पर तो अधिक बल दिया जाने लगता है, परंतु आंतरिक पक्ष का विकास नहीं हो पाता। अंत में धर्म के अंतर्गत रूढ़िवादिता ही अवशिष्ट के रूप में रहती है। पृष्ठ संख्या 72, शीर्षक है धर्म विश्वास या बुद्धि के रूप में। भावात्मक तथा क्रियात्मक पहलू के अतिरिक्त धर्म का बौद्धिक पहलू भी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म की उत्पत्ति जीवन की समस्याओं तथा सत्ता को बौद्धिक रूप में समझने के कारण हुई। धर्म की उत्पत्ति में केवल बुद्धि का योग नहीं होता। यदि आदिम धर्म को देखा जाए तो उसमें बुद्धि की अपेक्षा भाव और क्रिया का विशेष प्रभाव मिलता है। यह भी देखा जा चुका है कि धर्म के क्षेत्र में ज्ञान एक साधन के रूप में है। जीने की इच्छा के लिए ही जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। मनोवैज्ञानिक जी ए को ने ठीक ही कहा है कि धर्म बौद्धिक विकास का प्रतिफल नहीं है, बल्कि सुख दुख में पिसते हुए अस्तित्व को कायम रखने का फल है। इसी तरह मेरिट महोदय ने भी कहा है कि आदिम धर्म वास्तव में विचार मूलक नहीं बल्कि नित्य मूलक था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि बुद्धि अथवा ज्ञान का धर्म में कोई महत्व ही नहीं है। इतना तो माना ही जा सकता है कि बौद्धिक जिज्ञासा का महत्व धर्म की उत्पत्ति में चाहे न हो, परंतु धर्म के विकास में तो बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है। यह देखा जाता है कि बौद्धिकता के अभाव में धर्म के अंतर्गत रूढ़िवादिता एवं अज्ञान को प्रश्रय मिलता है। प्रारंभ में धर्म विचार भावों एवं संवेगों से अवश्य युक्त रहता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्वास अथवा ज्ञान का पूर्णतया लोप रहता है। विचार या विश्वास भी धर्म के अंग के रूप में है। इस प्रकार धार्मिक विश्वासों और विचारों का क्रमशः विकास भी देखा जाता है। अगला शीर्षक है, पहला, माना एक पराशक्ति के रूप में विश्वास। धर्म के विकास में ज्ञान या बुद्धि, विचार अथवा विश्वास का सर्वप्रथम महत्व तब देखा जाता है जब आदिम मानव माना को एक पराशक्ति के रूप में जानता है। उसे एक ऐसी अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है जो उनके जीवन को संरक्षण एवं समृद्धि प्रदान कर सकती है। माना शक्ति की वास्तविकता विश्वास से ही सिद्ध हुई जान पड़ती है। विश्वास के कारण यही दैवी शक्ति वास्तविकता का रूप ले लेती है। अगला शीर्षक है, दूसरा है, पौराणिकता। धार्मिक विश्वासों का दूसरा उत्थान पौराणिकता में पाया जाता है। पौराणिक विश्वासों में रचनात्मक कल्पना का योग मिलता है। पुराणों में कल्पनात्मक चित्रण पाया जाता है। कल्पना के द्वारा धार्मिक विश्वास कथाओं के रूप में प्रकट किए गए हैं, इसीलिए हेगल भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि धर्म पौराणिकता के अंतर्गत ही आबद्ध है। पौराणिकता के आधार पर ही धर्म और दर्शन में अंतर पैदा किया जा सकता है। धर्म जहाँ पौराणिक प्रतीकों का सहारा लेता है, वहाँ दर्शन पौराणिकता से दूर बिना प्रतीकों के शुद्ध प्रत्यय प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। दूसरी ओर यह मत भी प्रचलित है कि यदि पौराणिकता और धर्म में प्रतीकों का बाहुल्य है तो दर्शन इससे अछूता नहीं है। दर्शन चिंतनात्मक अवश्य होता है, परंतु उस चिंतन में प्रतीकों की सहायता ली जाती है। यह भी देखा जाता है कि विकसित धर्म प्रतीकों में ही आबद्ध नहीं रहना चाहते। प्रतीकों से मुक्त होना उनका लक्ष्य होता है। धर्म प्रतीकों से मुक्त होकर सत्य का निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। संभवतः इसीलिए क्रमशः धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन का उत्थान होता है। पृष्ठ संख्या 73। अगला शीर्षक है तीसरा, धर्मशास्त्र। धर्म की विकसनशील अवस्था में विचार उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पूर्ण सत्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में भावना और इच्छा शक्ति ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। धर्म के क्षेत्र में वही आत्मनिष्ठ भावना विचार के कारण वस्तुनिष्ठ बन जाती है। वही भावना प्रत्यय और भाषा के द्वारा प्रकट होती है और इन प्रत्ययों का सत्यापन विचार या चिंतन के कारण ही संभव होता है। इसी स्तर पर धर्मशास्त्र का प्राकट्य होता है। यह भी स्पष्ट है कि धर्मशास्त्र में धार्मिक भावना ही परिलक्षित होती है। यद्यपि धर्मशास्त्र में श्रद्धा और श्रुति को महत्व दिया जाता है, फिर भी इसमें तर्क, विचार और अनुभव का भी उपयोग होता है। अगला शीर्षक है चौथा, धर्म दर्शन। धार्मिक ज्ञान के विकास का अंतिम रूप धर्म दर्शन है। यद्यपि धार्मिक चेतना में धर्मशास्त्र की सदैव मांग रहती है, क्योंकि वह भावना के अधिक निकट होती है, परंतु कुछ समय पश्चात धर्मशास्त्र में निहित विश्वास और भाव रूढ़ियों के रूप भी ग्रहण कर लेते हैं। इस अवस्था में धर्म की प्रगतिशीलता में गतिरोध उत्पन्न होने से निर्जीवता, कठोरता, गतिहीनता एवं रूढ़िवादिता पैदा हो जाती है। ऐसी अवस्था में विकसनशील धर्म के दो कार्य हो जाते हैं। प्रथम, रूढ़ियों, गलत परंपराओं और अंधविश्वासों की आलोचना और धर्मशास्त्र की अन्य कमियों को प्रकट करना, तथा द्वितीय, समकालीन चिंतन के अनुकूल प्राचीन धर्मशास्त्रीय मतों का पुनर्गठन करना, जैसे ईश्वर के विषय में अपर्याप्त एवं अज्ञान युक्त धारणाओं का खंडन करके सर्वमान्य मतों के अनुकूल बनाकर उच्च आध्यात्मिक स्तर पर लाना और स्वीकृत करने योग्य बनाना। इस प्रकार धर्म का दार्शनिक विवेचन किया जाता है। यहीं से धर्म दर्शन का विकास प्रारंभ होता है। यद्यपि धर्म में भावना और इच्छा शक्ति का ही विशेष महत्व है, परंतु मानव बुद्धि की भी एक मांग होती है। धर्म को सिद्धांत के रूप में निरूपित करके बौद्धिकता की पूर्ति धर्म दर्शन के रूप में होती है।